آج کل
श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कार्यक्रम में ईरान में इस्लामिक क्रांति की विभूतियों व बरकतों के बारे में चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
इस्लामिक क्रांति शक्ति, गतिशीलता और प्रेरणा के साथ पांचवें दशक में दाखिल हो गई है। इस्लामिक क्रांति 40 साल गुजरने और इस्लामिक क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने एक बयान में देश में व्यापक संभावनाओं व क्षमताओं की ओर इशारा किया और मार्ग को जारी रखने तथा मार्ग में मौजूद रुकावटों को दूर करने के लिए अहम बिंदुओं को बयान किया। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता ने क्रांति के दूसरे चरण नामक बयान में क्रांति द्वारा तय हुए मार्ग का जवानों से उल्लेख किया और भविष्य के संबंध में आशावान दृष्टि के साथ क्रांति के उद्देश्य बताए। उन्होंने इस बयान में इस्लामिक क्रांति की विभूतियों का उल्लेख किया, जिनमें से हम ने कुछ का पिछले कार्यक्रम में वर्णन किया था। अब आपको आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई की नज़र में इस्लामिक क्रांति की कुछ दूसरी बरकतों से परिचित कराने जा रहे हैं।
ईरान में पहलवी शाही शासन में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच खाई बहुत गहरा गई थी। उस समय देश की संपत्ति और ज़्यादातर सुविधाएं राजधानी तेहरान में और शाही परिवार के हाथ में थी। जीवन की मूल सुविधाएं, खासतौर पर चिकित्सा क्षेत्र की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बहुत से गांवों में तो चिकित्सक भी नहीं थे। ईरान में टीकाकरण की प्रक्रिया भी सुचारू नहीं थी और बाल मृत्यु दर का आंकड़ा चिंताजनक था। विश्व बैंक के अनुसार ईरान पर 8 साल की थोपी गई जंग और 4 दशकों की पाबंदियों व आर्थिक दबाव के बावजूद ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सामाजिक विषमता और आय में असमानता में कमी आई।
यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों और वैज्ञानिक संस्थानों ने ईरान की इस्लामिक क्रांति के बारे में अपने शोध में इस बात को स्वीकार किया है कि इस्लामिक क्रांति ने निर्धन लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। ये शोध अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के अध्ययन और वर्ल्ड बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों पर आधारित है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार हमने 1977 से 2004 के बीच ईरान में गरीबी में आय बदलाव की प्रक्रिया की समीक्षा की, जिसमें रोजाना $2 आय को मानदंड करार दिया। समीक्षाएं बताती हैं कि वर्ष 1977 अर्थात इस्लामिक क्रांति से 2 साल पहले ईरान में 28% शहरी परिवार और 25% शहरी लोग निर्धन रेखा के नीचे जीवन बिता रहे थे। 1977 में गांव में निर्धन रेखा के बीच जीवन बिता रहे परिवारों और ग्राम वासियों का फीसद क्रमशः 66 और 60 था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 80 से 90 के दशक में गांव में बिजली, पानी और गैस पहुंचाने के लिए व्यापक पूंजी निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद तथा शिक्षा में विकास से ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सामाजिक विषमता में बहुत कमी आई। जंग के बाद कृषि उत्पादों के निर्धारित मूल्य पर खरीदारी की नीति अपनाई गई, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। 2004 में निर्धनता में बहुत कमी आई। दैनिक $2 आय के मानदंड के अनुसार वर्ष 2004 में शहर सिर्फ 1% और गांव में 7% लोग अत्यधिक निर्धनता में जीवन बिता रहे थे।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई क्रांति का दूसरा कदम नामक बयान में राष्ट्रीय संसाधन के न्यायपूर्ण वितरण को इस्लामिक क्रांति की बरकतों में गिनवाया। उनका मानना है कि इस्लामिक क्रांति से राष्ट्रीय संसाधन के वितरण में न्याय का पलड़ा भारी हुआ। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता देश में न्यायतंत्र के क्रियाकलाप में और बेहतरी आने पर बल देते हुए कहा, मुझे शिकवा है कि इस्लामी व्यवस्था में अदालत जैसे कीमती मूल्य को सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्याय की स्थापना के लिए कोई काम नहीं हुआ है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता बल देते हैं, सच्चाई यह है कि अन्याय के खिलाफ इन चार दशकों में संघर्ष की उपलब्धियों के विगत के किसी भी दौर से तुलना नहीं की जा सकती। उद्दंडी शाही शासन में देश की आय और सेवा के बड़े भाग पर राजधानी में रहने वाले एक छोटे से गुट या उनके जैसे देश के दूसरे क्षेत्र में मौजूद लोगों का कब्जा था। अधिकतर शहरों, खासकर सुदूर व ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मूल रचनाओं और सुविधाओं से वंचित थे। इस्लामी गणतंत्र केंद्र से पूरे देश में संपत्ति और सेवा पहुंचाने में दुनिया की सबसे कामयाब सरकारों में रही है। सड़क निर्माण, आवास निर्माण, औद्योगिक केंद्र की स्थापना, कृषि में सुधार, देश के सुदूर क्षेत्र में पानी, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, बांध, बिजली घर और इस तरह की चीज़ों को पहुंचाना वास्तव में ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर गर्व किया जाना चाहिए। अलबत्ता इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था के मद्देनज़र न्याय को, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का अनुसरण करने में रुचि रखती है, इन सब चीज़ों से अधिक अहमियत हासिल है, जिसे लागू करने में आप जवानों से उम्मीद है।
आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामेनी की नज़र में इस्लामी क्रांति की एक और उपलब्धि समाज में नैतिकता व अध्यात्म का आम होना है। उनका मानना है कि इस्लामी क्रांति से समाज में अध्यात्म और नैतिकता का स्तर बहुत बेहतर हुआ। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता की नज़र में इमाम खुमैनी के सदाचारी व्यक्तित्व और क्रांति के पूरे संघर्ष के दौरान और क्रांति की सफलता के बाद उनके उच्च व्यवहार से समाज के विभिन्न वर्गों में अध्यात्म बढ़ा। इमाम खुमैनी के बारे में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं, इंसान के शरीर में ऐसे आत्मज्ञानी व सदाचारी व्यक्ति के हाथ में देश की लगाम आई कि जिस देश की जनता की आस्था बहुत मजबूत थी। हालांकि पहलवी शासनकाल में भ्रष्टाचार व अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले प्रचार से उससे बहुत नुकसान पहुंचा और पश्चिम की नैतिक बुराइयाँ मध्यम वर्ग के लोगों, खासतौर पर युवा वर्ग तक पहुँच चुकी थी। लेकिन इस्लामी गणतंत्र के धार्मिक व नैतिक दृष्टिकोण ने तैयार मन, विशेष रूप से जवानों को अपनी ओर सम्मोहित किया और धार्मिक व नैतिक माहौल बन गया।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता समाज में अध्यात्म के चलने को, पवित्र रक्षा के काल सहित दूसरे कई क्षेत्र में युवा वर्ग के संघर्ष का ऋणी मानते हैं। ये जवान ईश्वर की प्रार्थना व दुआ के साथ साथ भाईचारे व बलिदान की भावना से भी ओतप्रोत थे। इन जवानों ने अपने व्यवहार से इस्लाम के आगमन के आरंभिक दौर की याद ताज़ा कर दी थी, जिसका बाद की नस्लों पर बहुत असर पड़ा। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी की नज़र में समाज में आध्यात्मिक माहौल बनाने में शहीदों और जियालों के साथ शहीदों व घायल हुए वीर सपूतों के परिवार के सदस्यों का भी योगदान रहा। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता इस बारे में कहते हैं, माँ बाप और बीवियों ने धार्मिक कर्तव्य परायणता की भावना की वजह से जिहाद के मोर्चों पर जाने वाले अपने प्रिय जनों की याद से मन को हटाया और जब खून में लथपथ उनके शवों को देखा तो इस मुसीबत पर ईश्वर का आभार व्यक्त किया।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता की नज़र में देश में आध्यात्मिक माहौल बढ़ने की मिसाल मस्जिदों और दूसरे धार्मिक स्थलों में अभूतपूर्व रौनक है। इस बारे में आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामेनी मस्जिद में एतकाफ नामक विशेष उपासना, इमाम हुसैन के चेहलों के अवसर पर पैदल चलना, विभिन्न धार्मिक समारोहों के आयोजन में विस्तार, अनिवार्य व गैर धार्मिक दान का उल्लेख करते हैं, जिनमें हर साल बेहतरी आ रही है। आज हज़ारों की संख्या में छात्र, जवान वर्ग, उस्ताद, मर्द और औरत मस्जिद में इतिकाफ के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस समय देश के निर्माण और विकास संगठन के कैंप हज़ारों स्वयंसेवी जवानों से भरे हुए हैं। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता नमाज, रोज़ा और हज जैसी उपासना में जवानों की व्यापक भागीदारी को इस्लामी क्रांति की अन्य बरकत गिनवाते हैं। वो इमाम हुसैन के चेहलुम के अवसर पर पद यात्रा कर दर्शन करने वालों की बड़ी संख्या को इस्लामी क्रांति के एक अन्य आध्यात्मिक उपलब्धि बताते हैं।
आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी कहते हैं कि जैसे जैसे पश्चिम में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ईरान में अध्यात्म व नैतिकता बढ़ रही है। वो कहते हैं, ईरान में आध्यात्मिक विकास ऐसे दौर में हुआ जब पश्चिम और उसका अनुसरण करने वाले देशों में नैतिक पतन और मर्द औरत को भ्रष्टाचार की ओर खींचने के लिए पश्चिम के व्यापार प्रचार की वजह से दुनिया के बहुत बड़े भाग में नैतिकता व अध्यात्म को हाशिए पर ढकेल दिया गया। ये इस्लामी क्रांति और इस्लामी व्यवस्था का चमत्कार है।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता की नज़र में इस्लामिक क्रांति की एक अन्य बरकत विश्व साम्राज्य का दिन प्रतिदिन बढ़ता विरोध है। इस्लामिक क्रांति के नेताओं ने ईरानी जनता को कठिनाइयों को सहन करना और दुश्मन के मुकाबले में दृढ़ता दिखाना सिखाया और इस मार्ग में जवान आगे आगे रहे। जनता साम्राज्य के खिलाफ डटी हुई है और कठिनाइयों को सहन कर साम्राज्यवादियों को वर्चस्व जमाने से रोक रही है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी इस बारे में इस्लामिक क्रांति के दूसरे चरण के बयान में कहते हैं, दुनिया की एकाधिकार जमाने वाली शक्तियों ने जो दूसरे देशों की स्वाधीनता में हस्तक्षेप और उनके मूल हितों की बर्बादी में अपना जीवन देखती हैं, इस्लामी व क्रांतिकारी व ईरान के मुकाबले में अपनी अक्षमता को स्वीकार किया है। ईरानी राष्ट्र इस्लामिक क्रांति की छत्रछाया में अमरीका के पिट्ठुओं व गद्दारों को राष्ट्र से निकाल बाहर किया और उसके बाद से आज तक विश्व साम्राज्य को दोबारा वर्चस्व जमाने से रोके रखा।